ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड का मंच सहयोग और साझेदारी का आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ जयशंकर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क्वाड विदेश नीतियों का बहुत ही गहराई से चिंतन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक क्वाड को नई दिशा देने में बड़ी मददगार होगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड विश्वसनीय दूरसंचार और समुद्री केबल कनेक्टिविटी से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। डॉ जयशंकर ने कहा कि विश्व में स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से आज का समय चुनौतियों से भरा है और इसलिए विश्वसनीय साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जरूरी हो गया है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के अलावा जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने एक कोचिंग सेंटर में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया है। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि ऐसी घटना में कितना भी मुआवजा दिया जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। श्री थरूर ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में इसी घटना पर शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए मामले की विस्तृत जांच करने और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन के नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताए जाने के बावजूद निकासी प्रणाली को स्वच्छ और सुचारू बनाने का कोई कदम नहीं उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोचिंग हादसे मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर आज चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी से किसानों को सहायता मिलेगी। उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए। श्री राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर अध्यक्षीय गरिमा कम करने का आरोप लगाते हुए उनकी कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना पर श्री गांधी की टिप्पणी पर कहा कि इस योजना के बारे में विपक्ष के नेता द्वारा गलतफहमियां पैदा की गई हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउज एवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शुरू हो गया और यह सत्र शुक्रवार तक चलेगा। पेरिस ओलंपिक में इस समय हॉकी के पूल बी मैच में भारत का सामना अर्जेंटीना से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना 1-0 से आगे था। इससे पहले आज मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल उनका सामना दक्षिण कोरिया की टीम से होगा। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में रमिता जिंदल सातवें और पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में अर्जुन बबूता चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।